सबसे धों की सिद्धता सब गुणियों का ज्ञान धर्म स्वरूप नारायण को नित हृदय माही पहचान प्रभु अपने से मांगियो सत धर्म आचार तीन लोक में सुख मिले जो जन धर्म विचार धर्म देवे कल्याण जो निश्चय से धार धर्म ही जीवन जगत में धर्म ही मरना सार झूठे जग को देख के मत मन से धर्म भुलाओ ये संपत दिन चार की अंत छाट सब जाओ धर्म ही परम सखा है जीव मिलावे ब्रह्म धर्म ही साधन सार है काटे कूप ब्रह्म शस्त्र साचे धर्म का राखो अपने हाथ जम दरवाजा जीत लो परस लो सतनाथ दुर्लभ देह मानुष की संतन करी पुकार उठ खाटो साचे नाम को हरो भरम बिखर सार झूठा लालच जगत को अंत देवे पछताप धर्म की नींद से जाग तू साचे नाम को जाप ना कोई दया ना रह सके इस सागर में आए घड़ी सुलखनी जानिए जो प्रभु कीरत गाए सब कुछ कूड़ो कूड़ है साचा धर्म एक नाम मंगत सिमरे जो गुनी अंत लेवे विश्राम सब कुछ पूरो पूरो है साचा धर्म एक नाम मंगत सिमरे जो गुनी अंत लेवे बिसराम। सब सिद्धों की सिद्धता, सब गुनियों का ज्ञान, धर्म स्वरूप नारायण को नित हृदय नाही पहचान। धर्म स्वरूप नारायण, जो नारायण है वो स्वयं धर्म स्वरूप। हम जानते हैं कि गन्ने में मिठास होती है, लेकिन मिठास के अलावा भी गन्ने में बहुत कुछ होता है, परंतु उस गन्ने के अंदर जो मिठास है तो उसी प्रकार समझिए जैसे कि यहां धर्म की बात हो रही है, लेकिन उस मिठास को जब इकट्ठा कर लिया जाता है फिर उससे चीनी तैयार हो जाती है। और चीनी क्या है? वो मिठास का स्वरूप ही है, उसके अंदर मिठास के अलावा कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार जो धर्म है, एक तो हम धर्म पालन करते हैं, धर्म की राह पर चलते हैं, एक धर्म का स्वरूप है जो नारायण है। इसलिए धर्म मार्ग पर चलते चलते एक दिन मेरे जीवन में ऐसा आता है कि मैं धर्म रूप ही हो जाता हूं। इसलिए महाजी संतरदास में कह रहे हैं कि समता को ही धर्म करते। समता का अर्थ होता है संतत्व, ब्रह्म, नारायण या कोई भी नाम दे ले। तो इसीलिए जो मेरी धार्मिक क्रिया उस धर्म रूप परमेश्वर तक मुझको ले जाती है वही क्रिया धर्म है, बाकी अन्य कोई धर्म हो ही नहीं सकता। बाकी सब आपके जीवन में अच्छे काम होते हैं, बुरे काम होते हैं, कामों को हम तरह तरह से कैटेगराइज करते हैं, लेकिन वास्तव में जो धर्म है वो केवल वही है जो आपको नारायण तक ले जाकर उसके साथ एक है। इसलिए वो कह कह रहे हैं प्रभु अपने से मांगियो सत धर्म आचार तीन लोक में सुख मिले जो जन धर्म विचार। अब वो धर्म मिलता कहा है? कहते हैं कि उसको पहचाना कहा है? नित हृदय माही पहचान। वो धर्म मिलेगा कहा, उसकी पहचान कहाँ होगी? वो हृदय में अर्थात देह के अंदर ही होगी। इसका मतलब धर्म का संबंध संसार से नहीं है, धर्म का संबंध मेरी देह के साथ ही है, क्योंकि इस देह के अंदर ही धर्म का निवास, जिसको हम आत्मा कह देते हैं, जिसको हम परमेश्वर कह देते हैं, जिसको हम ब्रह्म कह देते हैं, जिसको हम शब्द ब्रह्म कह देते हैं, शब्द रूप परमेश्वर कह देते हैं, कई नाम है, लेकिन वो इस देह के अंदर है और मैं स्वयं भी इस देह के अंदर ही हूं, उसी प्रकार अंदर हूं जैसे कि गन्ने के अंदर मिठास मौजूद है। जिस प्रकार गन्ने के अंदर चीनी मौजूद है, मिठास मौजूद है, माजी कह रहे हैं जिस प्रकार मेहंदी से गंध को अलग किया जा सकता है, उसी प्रकार गन्ने से उस चीनी को, उस मिठास को अलग किया जा सकता है। इसीलिए जो धर्म का मार्ग है उसकी यही पहचान है कि वो इस मिठास को, इस ईश्वर को इस देह से अलग कर देता है और मेरा उसके साथ परमानेंट संबंध बन जाता है, मैं ईश्वर में ही स्थित हो जाता हूं। इसकी आगे प्रार्थना क्या कर रहे हैं? प्रभु अपने से मांगियो सत धर्म आचार तीन लोक में सुख मिले जो जन धर्म विचार। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है मेरे लिए यही लोक है। वैसे यदि संसार की बात करें तो एक ये पृथ्वी लोक है, या संसार लोक है, एक स्वर्ग लोक की बात करते हैं जिसकी कल्पना होती है, वहां केवल सुखी सुख के अलावा दुख वहां भोगने को मिलता ही नहीं। लेकिन सत्य यह है कि स्वर्ग लोक भी टिकाऊ नहीं है, वो भी बदल जाता है। तीसरा है ब्रह्म लोक, जहां प्रभु का स्वयं निवास है, ब्रह्म का स्वयं निवास है, वहां से कोई फिर वापस नहीं लौटता, वो मेरा स्थायी निवास है। तो मान क्या रहे प्रभु से, प्रभु अपने से मांगो सत धर्म आचार, मुझको प्रभु ऐसा आचरण दो, ऐसे जीवन की क्रिया दो, ऐसा वे ऑफ लाइफ दो कि मैं धर्म को पालन करते करते धर्म रूप ही हो जाऊं। इसीलिए प्रभु कृपा करते हैं तो वो ये आचार देते हैं, वही ब्रह्म गुरु रूप में मंगत रूप में संसार में आया, जिसको हम अवतार कह देते हैं, सदगुरु कह देते हैं। तो उसने कौन सा आचरण दिया? वो स्वयं ब्रह्म में स्थित है, हमारी बेचैनी को खत्म करके वो हमको भी ब्रह्म के साथ एक करना चाहता है, इसलिए वो हमको सद आचरण ही देता है, धार्मिक आचरण ही देता है। किस रूप में दिया उसने? बात पांच नियम के, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्संग, ये पूरा प्रोग्राम है जो आपको ब्रह्म के साथ एक कर दे। सादगी एक शब्द है, कोई इसको सादे कपड़े पहनने को सादगी समझ लेगा, कोई सादा आहार करने को सादगी समझ लेगा, लेकिन सादगी का मतलब ये है कि वासना को कम करने के मार्ग पर लगातार चलते रहे। तब तक चलते रहना जब तक वासना निवृत्त ना हो जाए। तो सांसारिक जीवन में जो शारीरिक जीवन हम व्यतीत करते हैं उसमें सादगी चाहिए, हर मामले में सरलता, हर मामले में सिंपलिसिटी, चाहे वो पहनने की बात हो, चाहे वो बोलचाल की बात हो, चाहे वो खान पान की बात हो, चाहे वो रहने की बात हो, चाहे वो व्यवहार की भी बात क्यों ना हो, हर मामले में सादगी का मतलब ये है कि मैंने अपनी सोच को इस प्रकार ढालना है, बदलना है कि मेरी इच्छाएं, मेरी जरूरतें दिन प्रतिदिन कम होती रहें और प्रभु की जरूरत मुझको ज्यादा महसूस होने लगे, प्रभु का महत्व तो हर वर्ष मेरे जीवन में बढ़ता रहे और संसार का महत्व तो, वस्तुओं का महत्व तो जीवन में हर वर्ष कम होता रहे। ये जो वे ऑफ लाइफ है ये सादगी का जीवन। तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर दूसरा नियम है सत। सत कहते हैं ईश्वर, ब्रह्म को, आत्मा। तो सारे जगत का मालिक वो सत ही है, उससे हटके कुछ ही है ही नहीं। तो सारे जगत का मालिक है, मेरी देह का भी मालिक है, मैं उस पर से ही अपना विश्वास हटा लेता हूं और संसार पर विश्वास करने लगता हूं। जिस शरणागति की बात आप सुन रहे थे, ये सत वो शरणागति ही सिखाता है, उस एक ही ईश्वर पर भरोसा रखो, आपके जीवन में ना कुछ बनने वाला है ना बिगड़ने वाला है। जैसा प्रारंभ उसने आपका दे दिया है देह का, उसके अनुसार देह की कंडीशन आएंगी और जाएंगी, देह और संसार में उसके अनुसार परिवर्तन होंगे। लेकिन याद रख, तेरे साथ न्याय के अलावा अन्य कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्याय तेरे साथ प्रभु ने पहले से ही निर्धारित करके छोड़ दिया। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तेरे साथ अन्याय कर सके, लेकिन बाहर से देखें तो हमको अन्याय प्रतीत होगा। मैंने किसी को पैसा दिया अपनी मेहनत की कमाई का, उसने मार लिया, अब वो दे नहीं रहा है, मैं कहूंगा इसने अन्याय किया, लेकिन मुझको क्या पता, प्रभु ने यही विधान मेरे लिए तैयार किया। जिस पैसे को मैंने पूर्व जन्म में किसी से लेकर खा लिया था, इस जन्म में अब मुझको देना पड़ रहा है। इसीलिए निडर होकर अपने अंदर उस ईश्वर का विश्वास रखकर मैंने सही मार्ग पर चलना है, ईमानदारी के मार्ग पर चलना है। तीसरी बात वो कह रहे हैं सेवा। सेवा क्यों? जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहा है, जो मेरे जीवन की रक्षा कर रहा है प्राण के अनुसार, पृथ्वी की रक्षा कर रहा है, सारे वायुमंडल की रक्षा कर रहा है, क्या ऐसे प्रभु को मेरी सेवा की जरूरत है? जरा विचार करके फिर ये सेवा का नियम क्यों दिया? सेवा का नियम इसलिए दिया कि मेरे अंदर स्वार्थ भावना है, माता पिता मेरे लिए करे, भाई बहन मेरे लिए करे, समाज मेरे लिए करे, मुझको सब सुख प्रदान करें, मैं चाहे कुछ भी क्यों ना करता। तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या है? ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है कि मन के अंदर वासना का शून्य हो जाए। एक दिन ऐसी अवस्था आ जाती है जिस प्रकार गुरुदेव मंगल राम जी की थी, कि वासना शून्य अवस्था थी। तो वासना शून्य होती है तो जिस मन के अंदर वासना निवास करती है, ये मन फिर प्रभु में ही लीन हो जाता है, परमानेंट लीन है, फिर इसका उदय नहीं होती। तो प्रभु ने मुझको निर्वास स्थिति में ले जाना है और मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु अपने से मांगियो सत धर्म आचार। मेरा प्रभु है, अपना प्रभु है, मैं उससे मांग कर रहा हूं कि ऐसा आचरण दो कि मैं आपके पास पहुंच सकूं, फिर आपसे मैं अलग ना हो सकूं। तो वो गाइड कर रहा है कि तुझको स्वार्थ भावना छोड़कर तेरी नजर इस पर होना चाहिए कि मैं चाहे परिवार है चाहे बाहर है, मैं किसी के लिए क्या काम आ सकता हूं, किसी का क्या दुख दूर कर सकता हूं, जो भी मेरी सामर्थ्य, तो मेरी दृष्टि लेने पर नहीं देने पर होनी चाहिए, सेवा करवाने पर नहीं सेवा करने पर होनी चाहिए। ये वासना निवृत्ति का मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। इसके बाद वो कहते हैं सत्संग। अभी जितनी भी वाणी है और जितना भी ये सत विचार है वाणी पर, ये क्या है? सत्संग ही तो सत्पुरुषों के वचनों का यदि संग ही नहीं करोगे तो ये विज्ञान सीखोगे कहां से? इस मार्ग पर चलने वाले लोगों का आपका संग ही नहीं करोगे तो प्रेरणा मिलेगी कहां से? ये वास्तव में प्रैक्टिकल मार्ग है, इस पर चला जा सकता है। तो गुरु से लेकर गुरु की संगत तक, शास्त्रों तक, ये सारा का सारा सत्संग ही तो है। यहां आकर हमारी बुद्धि खुलती है, बुद्धि के विचार बदलते हैं, बुद्धि के निश्चय बदलते हैं और मैं फिर इस ज्ञान के प्रकाश में अपना सत्मार्ग धीरे धीरे तय करता हूं और एक दिन ईश्वर तक पहुंच जाता हूं। आखिरी बात वो कह रहे हैं सत्संग। तो जिस प्रभु तक पहुंचना है उसको आप याद ही नहीं करोगे तो पहुंचोगे कैसे? उस प्रभु के पास पहुंचने का एकमात्र रास्ता है कि उसकी प्रेम से याद, और उसकी प्रेम से याद करने में हम विफल क्यों होते हैं? हम सब जानते हैं हमारी विफलता इसलिए होती है क्योंकि हमको ईश्वर पर विश्वास नहीं। तो जो सारा जो शरणागति का विज्ञान आप सुन रहे थे वो यही बात तो सिखा रहा था ये विषय, कि शरणागति का मतलब ये एक है कि प्रभु पर आधारित होकर अपना ये सांसारिक जीवन व्यतीत करें और इसमें भयभीत नहीं होगा, इसमें विचलित नहीं होगा। अर्जुन की क्या कंडीशन थी? जब भीष्म पितामह लोग जैसे लोग सामने खड़े हों, उसके गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग सामने खड़े हों, तो अर्जुन की क्या दशा होगी? लेकिन उसका समर्पण कृष्ण के प्रति था। जब वो मुसीबत में आया तो कृष्ण का ही आश्रय उसने लिया, तो कृष्ण ने उसको मुसीबत से मुक्त कर लिया। हम सब जानते हैं प्रभु के अलावा कहीं दूसरी जगह मुझको आश्रय नहीं तलाश करना चाहिए। याद रखिए आपका कोई आश्रय है भी नहीं। यदि किसी अन्य शरीर का आश्रय तलाश कर भी रहे हो तो याद रखो उसके अंदर जो अंतर्यामी प्रभु है, जब तक वो नहीं चाहेंगे वो व्यक्ति आपकी कोई मदद कर नहीं सकता। डोर वही लाएंगे, वही तुम्हारी मदद करवाएंगे। इसलिए तुम देह पर आश्रित क्यों होते हो, प्रभु पर आश्रित क्यों होते? इसलिए जो वास्तव में भक्त है वो प्रभु पर आश्रित रहता है। इसलिए वाणी गाइड कर रही है, सकले कर्म प्राकृत के प्रभु आज्ञा में त्याग, अनन भाव सिमरन करो चित में दृढ़ अनुराग। सकले कर्म प्राकृत, जितने भी बाहर का आपको ये संसार नजर आ रहा है उसको प्रकृति कहते हैं अर्थात, यहां जितने भी कर्म हैं प्रभु आज्ञा में त्याग। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मैं कर्मों का प्रभु आज्ञा में त्याग कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है वहां प्रभु आज्ञा में तुमने कर्म का त्याग कर दिया, इसका मतलब यह है कि प्रभु आज्ञा में ही मुझको कर्म करने को मिला, प्रभु आज्ञा में ही उसका फल भी मिलेगा। तो प्रारब्ध का तो मुझको पता नहीं कि अगले घंटे मैंने क्या कर्म करना है, मुझको नहीं पता, तो उस कर्म को मैं कैसे त्याग सकता हूं। इसका मतलब यह है कि जो कर्म भी मुझको करने को मिलता है उसको मैं सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार करने की कोशिश करूं, शुद्ध नियत से, शुद्ध तरीके से, और उसका जो फल है तो मेरा संबंध कर्म से नहीं होता, कर्म मैं करता हूं फल प्राप्ति के लिए, तो मेरा संबंध वास्तव में फल से है, तो उसका जो फल है उसको मैंने ईश्वर हुक्म में देना कि प्रभु ने यही देना। तो प्रभु आज्ञा में त्याग का मतलब यह है कि जो मैं कर्म करता हूं उसका जो फल है वही मेरे भाग्य में है, वो प्रभु ने मुझे दिया है, इसीलिए मुझको कोई मलाल नहीं होना चाहिए, मुझको किसी से शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो जो भक्त है वो अंदर संतुष्ट रहता है, क्यों संतुष्ट रहता है, फल मनचाहा नहीं मिला तब भी संतुष्ट रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर पूरा भरोसा होता है कि प्रभु ने मुझको इतना ही दे दिया, मैंने इसमें ही संतोष करना है, इसमें ही काम चलाना है। तो ऐसा व्यक्ति तो जब सिमरन करने बैठता है तो मन में उसके बेचैनी नहीं होती, चिंता नहीं होती, निश्चित भाव से वो प्रभु की भक्ति कर सकता है, प्रभु का सिमरन कर सकता है। इसीलिए ये कई बार वाणी का हम उल्टा अर्थ दिखा लेते हैं, तो यहां पर जो है सकले कर्म प्राकृत के प्रभु आज्ञा में त्याग, इसका मतलब यह है कर्म जो करने को मिला है वो भी प्रार्थ के साथ प्रभु हुक्म में देख, और जो उसका फल जिसको मिल रहा है उसको भी प्रभु हुक्म में देख, तभी कह रहे हैं कि अनन भाव सिमरन करो चित में दृढ़ अनुराग। जब ये बात ध्यान में रखोगे तब अनन्य भाव से आप सिमरन करने में सफल हो सकते हैं। अनन्य कहने का मतलब यह हुआ कि मन में कुछ अन्य ना आए वो अनन्य है, प्रभु के अलावा मन में कुछ अन्य ना आए वो अनन्य भाव सिमरन का है, और चित्त में दृढ़ अनुराग अर्थात बुद्धि के अंदर प्रभु का दृढ़ निश्चय दृढ़ प्रेम हुआ। इसीलिए अंत में ध्यान रखें, मानुष दुर्लभ देह मानुष की, संतन करी पुकार, उठ खाटो साचे नाम को, हरो भरम बिकसा। ये मानुष देह दुर्लभ है, सारे संत ये पुकार करके कह रहे हैं, ये कई जन्मों के बाद मनुष्य जन्म जब मिलता है पता नहीं कितने जन्मों के बाद, तुरंत भी मिल सकता है, जैसे महाराज जी खुद अपने बारे में कह रहे हैं प्रेमी ये पिछले 3 जन्म की कमाल है, इसका मतलब पिछले 3 जन्म लगातार उनको मनुष्य के मिल रहे हैं और वर्तमान जन्म में वो अपनी कमी को पूर्ण करके ईश्वर के साथ एक हो गए, या ये कहने ईश्वर ही हो गए, इसलिए वो गुरु रूप में हमारे सामने आए, क्योंकि जो निराकार ईश्वर है उसका मार्गदर्शन हमको नजर नहीं आता, जो वो शरीर रूप में प्रकट होता है तब हम उसको फॉलो करते हैं, उसकी बात पर विश्वास करते हैं, हमारे निश्चय में आता है कि वास्तव में ये है, इसने उस ईश्वर को प्राप्त किया है, तो मैं भी इसी प्रकार इस मानुष देह में उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूं। तो मानुष देह इसलिए दुर्लभ नहीं है कि वो मिल गई आपको, इसलिए दुर्लभ है कि मानुष देह प्राप्त करके आप ये ईश्वर प्राप्ति का दुर्लभ कर्म कर सकते हो, और हमेशा हमेशा के लिए दुखों से संसार के बंधन से छुटकारा प्राप्त करके अमर जीवन प्राप्त कर सकते हो, इसके ऊपर प्राप्त करके ओम ब्रह्म सत्य सत्य।